लैला सुहेली, तुम्हारी शक्ल सूरत में उन दोनों की नस्बत बहुत ज्यादा फर्क आ गया।
मुझे आदत नहीं कि गुजरे हुए दिनों के बारे में सोचूं।
क्यों रोया, तुम्हें फरिश्ता क्यों कहती थी?
मुझे पता नहीं, शायद इसलिए कि वो सोची थी मैंने उसे निजात दिलाई है।
निजात का फरिश्ता,
इसी तरह की कोई बात।
तुमने जब रोये को निजात दिलाई तो खुद को भी निजात दिला सकती थी।
यहाँ पर भी मुझे बदल नहीं सके, माफ कीजिए, सॉरी। मुझे पता है आप अपनी पूरी कोशिश बरुए का ला रहे हैं ताकि मैं टूट जाऊं।
तुम पहले ही टूट चुकी हो लड़की, दर हकीकत मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को आपस में जोड़ दूं, बस यही।
किस लिए? तो क्या मैंने तुमसे चाहा है कि मेरे लिए कोई काम करूं? अगर तुम्हारी नजरों में मैं मुल्जिम लग रही हूँ तो मुझे भेज दो अदालत में, वो लोग मेरे जुर्म के मुताबिक मेरे लिए हुक्म सुनाएंगे। लेकिन अगर तुम सोचते हो कि मैंने धोखा खाया है तो तुम मेरे शऊर की तोहिन कर रहे हो।
मेरे तोहिन करने का कोई इरादा नहीं है।
एक नजर इन तस्वीरों पर डालो। इस वक्त वो बड़े काबिल फख्र लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? एक आम जिंदगी, इनमें से बहुत से लोगों के बच्चे हैं जिनकी जरूर अपनी तरह उन्होंने परवरिश की है। मुट्ठी भर तोते रहा हो गए हैं इस शहर में, ऐसे तोते जिन्होंने अच्छी तरह से सीख लिया है कि खूबसूरत बातों को जबानी याद करके दोहराएं।
तोते की तरह रटी हुई बातें करना फिरकों का काम है। हर उस बात को जो मालिक, उस्ताद, बॉस, हर नाम जो तुम इसके ऊपर रखती हो, इसने तुम्हें सिखाई है, उसको तुम दोहराती हो इसके मानी को समझे बगैर।
मैं जो कुछ भी कहती हूँ मेरी अपनी बातें हैं।
वाकई तुम्हारी अपनी बातें? लेकिन तुम्हें मालूम है कि अगर एक तोता इन बातों को दोहराने के बजाय जो इसको सिखाई गई है वो सोचना शुरू कर दे और इन बातों को बताना शुरू कर दे जो वो खुद सोचता है तो क्या होगा? उसके मालिक को गुस्सा आएगा और वो इसका दाना पानी बंद कर देता है, और फिर भी वो तंबी ना हो तो?
मैं किसी का भी तोता नहीं हूं। जिस वक्त मैंने वो तस्वीर ली थी उस वक्त मैं तोता थी, लेकिन अब नहीं। मेरे माँ बाप और माशरा, क्यों? इसलिए कि मैंने चाहा था मैं खुद सोचूं, मैंने चाहा था अपने रास्ते को मैं खुद ढूंढूं, मैंने इजाजत दी हकीकत के दरवाजे मेरे सामने खुल जाएं ताकि मेरे जहन के अंधेरों के इस कमरे में रोशनी आए, और इसी वजह से मैं इस वक्त यहाँ हूँ। अगर तुम्हारी इल्मी तफरी खत्म हो गई तो कह दो मुझे लौटा दें अपनी कोठरी में। मेहरबानी करके कह दो मेरी आंखों को बंद कर दें, क्योंकि बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि इस शहर के तोतों को देखूं।
ठीक है, मैं तुम्हें लौटा देता हूँ, लेकिन इससे पहले तुम्हें किसी से मिलना होगा।
मेरी बच्ची मेरे पास आओ, लैला मेरी बच्ची मेरे पास आओ, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं मेरी बच्ची, मैं तुम पे कुर्बान जाऊं।
ले जाएं सर, ये भी देखें सर।
मरियम का फूल, मरियम के लिए हमेशा की तरह। ये मत समझना कि भूल जाऊंगा, मैं पहुंच गया और तुमसे पहले हमेशा की तरह।
मरियम उसके मंगेतर है, जितना मैं फोन कर रहा हूँ रीचेबल नहीं है, उसके घर वालों को भी उसके बारे में इत्तला नहीं है।
تو پھر اصل ملزم مریم ہے؟
فی الحال ہاں.
پیار کرنے والوں کی وعدہ گاہ، وہ عاشقانہ وعدہ جس کا معشوق کے ہاتھوں خون کیا گیا. اچھی سرخیاں دیتا ہے اخبارات کے جرائم کے صفحے کے لیے.
یہ آپ کے بقول پیار کرنے والوں کی وعدہ گاہ، یہ مقتول، یہ ملزم، سب کے سب تیار ہیں ایک عجیب و غریب قتل کے لیے. اس وجہ سے میں نے کہا کہ آئیں اور کوئی رائے دیں، ایک نظر ڈالیں.
اگر مریم قاتل ہوگی تو روزبے کو یہاں بلانے اور اس کو قتل کرنے کے ذریعے وہ چاہتی تھی کہ ایک سمبولک کام کرے، ورنہ وہ یہ کام کسی اور جگہ پر بھی کر سکتی تھی. تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس دفعہ تم نے مجھے بیکار میں نہیں بلایا. واقعی میں
ایک عجیب قتل ہے،
اور عام طور پر ان عجیب و غریب واقعات میں فرقوں کی ایک فکر کا عمل دخل ہوتا ہے.
تو پھر ہم کیس کا جائزہ لیں گے، اگر کوئی فائدہ مند بات ہمیں ملی تو آپ کو ضرور بتائیں گے.
احمد کے ساتھ ہم آہنگی کرو.
ٹھیک ہے. تھکے ہوئے نا؟
نہیں بالکل بھی. ان گھروں کی چھتوں کے نیچے، سڑکوں پر، گاڑیوں میں پائے جاتے ہیں ایسے نوجوان روزبے، مریم، رویا کی طرح کے، جو یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ پا لیا ہے جو وہ چاہتے تھے. دنیا ان کے قدموں تلے بچ گئی ہے، وہ آزاد ہیں، رہا ہیں. اس بات سے غافل ہو کر کہ ان کا اختیار اب کسی اور کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، اور وہ ان کو بالکل چابی والی گڑیا کی طرح استعمال کرتے ہیں، صرف ایک کھلونے کی طرح.
تمہاری کافی ابھی گرم ہے، پی لو، ٹائم پر آئیے.
میرا دل نہیں چاہتا تھا تمہیں انتظار میں رکھوں، میں نہیں چاہتی تھی کہ دیر ہو جائے.
اپنی کافی پیو. ٹھیک ہو چکاوک؟
اپنی پوری عمر میں اتنی ٹھیک نہیں تھی.
تمہاری کوئی عمر نہیں ہے چکاوک.
کتنا اچھا ہے کہ تم مجھے چکاوک کہہ کے پکارتے ہو. اب کوئی مریم کا وجود نہیں ہے، ختم ہو گئی.
نام صرف ایک معاہدہ ہے. جب تمہارا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، تمہارے ماں باپ نے یہ نام تمہارے لیے منتخب کیا. بالکل معلوم نہیں تھا کہ یہ نام تم پر جچتا ہے یا نہیں، لیکن چکاوک بہت تم پر جچتا ہے.
تم ہمیشہ مجھے چکاوک کہہ کے پکارتے ہو، لیکن کبھی اس کی وجہ نہیں بتائی.
تمہارے کام اور تمہاری آواز کی وجہ سے.
میرے کام؟ تو میں کیا کرتی ہوں؟
ایک جگہ پر میں نے چکاوک کی تعریف پر پڑھا تھا کہ چکاوک زمین پر بیٹھ جاتا ہے اپنے گھونسلے میں، پھر شکاری اس کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ بے حال ہے اور اڑنے کی سکت نہیں رکھتا، اور اس پر حملہ آور ہوتا ہے. لیکن چکاوک اسی وقت اڑ جاتا ہے، وہ جا کر ذرا اس طرف بیٹھ جاتا ہے. شکاری سوچتا ہے اس کو کوئی بیماری ہے، دوبارہ اس کی طرف حملہ کرتا ہے. چکاوک ایک بار پھر وہی کام کرتا ہے. اتنا وہ اسی کام کو دہراتا ہے کہ شکاری تھک جاتا ہے اور چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس کو وقت کا بیوقوف بھی کہا جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس حد تک شکاری کو اپنے پیچھے دوڑاتا ہے، یہاں تک کہ شکاری بیوقوف نظر آ جائے.
میں چاہتی ہوں بہت سی چیزیں تم سے سیکھوں.
رہنے دو، تم خود وقت کی بیوقوف ہو. ठीक हो तो तुम्हारा रंग वहाँ हुआ था।
तुम्हें देखकर बेहतर हो जाती हूँ।
तुम्हें पता है जो भी तुम्हारे पीछे ना दौड़े वो बेवकूफ है चकावा। चाहती उसके बारे में हम बात करें?
तुम सच कहते थे, इजी फील कर रही हूँ, एक बोझ उतर गया है। एहसास कर रही हूँ कि मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ, उरूज पर पहुँच रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम मुझे कहते थे। मैंने रोज़बेग को छोड़ दिया, सब खत्म कर दिया, रहाई मिल गई। अमीर, क्या हुआ?
मुझे रोज़बे से हसद हो रहा है।
क्यों?
शायद उसको खुद पता ना हो कि उसने क्या किया है। वो कभी नहीं समझेगा कैसी मदद की है तुम्हारी उसने, तुम्हारे पाक होने के लिए, तुम्हारे सामने जन्नत और सादत के दरवाजे खोलने के लिए। यह बात कि एक शख्स अपनी अदम मौजूदगी के जरिए इतनी सारी इंसान की मदद करे, यह खुद हसद करने वाली बात है। चकावक रोज़बे एक हकीकी आशिक था, एक आशिक।
तुम्हारी ये बातें इस बात की अकास है कि तुम कितनी बड़ी रूह के मालिक हो। अमीर, तुम्हें नहीं मालूम कि रोज़बे तुम्हारे बारे
में। मत करो, इस लम्हे के बाद तुम पाकिजा पैदा हुई है, माजी को भूल जाओ। अब कोई गुजरे हुए कल का वजूद नहीं है, जो कुछ है वो आने वाला कल है। वो तस्वीर जो रोज़बे की है उसको रहने दो, उसी गुजरे हुए कल के लिए। तुम इस वक्त अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े लम्हे में दाखिल हो गई हो। 40 दिनों के बाद तुम ऐसी जगह पर पहुँचोगी जिसका तुम तस्वीर भी नहीं कर सकते, एक हकीकी जन्नत में। ऐसी जन्नत नहीं जो सिर्फ एक वादा है।
तुम बाइस बने कि मैं दोबारा पैदा हो जाऊँ, मेरी तवज्जो रोशनी की जानिब करवाई।
नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे रास्ते में आया हूँ। दुनिया ने हमें एक दूसरे के नज़दीक रख दिया है ताकि एक साथ मिलकर कामिल हो जाए। बाकी कामों को तुमने खुद किया है। बड़े कदम बड़े लोग उठाते हैं ताकि उनका कद पहुँच सके सूरज तक। क्या तुम तैयार हो अपने अगले बड़े कदम के लिए?
मैं तैयार हूँ। कुछ चीज़ें भी अपने साथ ले आई हूँ, कुछ फालतू ज़ाती चीज़ें।
ठीक है, यहाँ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं आया है जिसे ज़बरदस्ती रोका जाए।
ये लो, तुम्हारे हाथ में रहे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी।
पुरसुकून हो जाओगे चकावत, यहाँ सुकून की जगह है। 40 दिनों के बाद तुम्हारे लिए आसमान की तरफ नए दरवाजे खुल जाएंगे।
मतलब वो पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हैं?
माजी के बारे में बस सोचो, तुम एक मुंतखब फर्द हो। क्या तुम सोच रही हो कि अब तक कौन लोग तुम्हारे रास्ते पर आए हैं? क्या तुम सोच रही हो जहां पर इस वक्त तुम पहुंची हो वहां पहुंचना आसान है? नहीं, क्योंकि तुम मुंतखब हुई हो। ये दरवाजा जब बंद हो जाएगा तो तुम अपनी नई दुनिया में बंद हो जाओगी, और कोई भी मेरे सवा नहीं जानता कि तुम यहां हो। मैं तुम्हारे लिए एक आईने के मानिंद हूं, तुम अपने आप को मेरे अंदर देख सकती हो। क्या मैंने तुमसे झूठ बोला है?
नहीं,
यहाँ तुम्हारे सुकून के लिए एक तमहीद है। यहाँ तुम अपने अंदर की मरियम को बाहर निकालोगी और चकावक के लिए जगह बनाओगी। यहाँ तुम अपनी असल पहचान खत्म करोगी, एक परिंदे की तरह। मरियम की राख से चकावक बाहर निकलेगा।
तुम्हारी बातें मुझे सुकून पहुंचाती हैं।
ये मेरी बातें नहीं है जो तुम्हें सुकून पहुंचाती है, ये तुम्हारा सूरज पर ईमान और अकीदा है जो तुम्हें सुकून पहुंचाता है। तुम आगे बढ़ोगी, आगही की रोशनी के साथ नमू पाओगी।
तुम्हारी तरह?
मेरी तरह? मैं तुम्हारे मुकाबले में कुछ नहीं, तुम्हारी सलाहितों के सामने मैं कुछ नहीं हूं। मैं जब तुम्हारे सामने होता हूं तो मुझे अपने आप से शर्माती है।
ये बातें तुम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे हो?
मैं तुम्हारा आईना हूं, क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं?
नहीं, पड़ोसी अगर देखेंगे कि एक अरसे से इस घर में रफ्तामत नहीं हो रही तो क्या वो पुलिस को इत्तला नहीं देंगे?
वो नादान लोग जो कीड़ों की तरह अपने तई रेंग रहे होते हैं, उनकी नासमझी से हर जगह पर ताफुन की बदबू फैली हुई है। अगर मालूम हो जाए कि उनके पड़ोस में ऐसा कीमती सदफ है जिसके वजूद में एक मोती है तो वो फख्र करेंगे।
अगर वो पुलिस को इत्तला दे तो क्या होगा?
परेशान ना हो, वो कभी तुम तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे, बेफिक्र रहो।
बहुत अच्छा है कि तुम मेरा आईना हो।
मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, यह कानून के खिलाफ वर्जी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह मेरी तहरीरें हैं। मैं भी किसी दिन तुम्हारी जगह पर खड़ा था
तो क्या मैं भी एक दिन आईना बन जाऊंगी?
तुम्हारी काबिलियत इन बातों से ज्यादा है, इनको जरूर पढ़ो। देखो कि मैं भी इस अरसे में मुतादिद और कई बार शुबे से दो चार हुआ था। मुझे शक हुआ था, लेकिन मैं पायदार रहा, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी तक पहुँच गया। जन्नत के बाग के सुकून में तुम इन दिनों शकों को सुबह पर हंसों की चकावक, इनको पढ़ो, समझो कि तुम अकेली नहीं हो, जुदाई का अब कोई वजूद नहीं है। अब इसके बाद तुम भी हमें से एक हो।
वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो?
ठीक हूँ मैं।
लो, तुम्हारे लिए काम लाया।
पहले इसे तो अनलॉक करने दो।
इस पर भी काम करो, ये मुझे उस जगह पे मिला जहाँ रुजू पे गिरा हुआ था।
आखिर इसका क्या हो सकता है?
सलामुलेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
सब खैरियत है?
शुक्रिया।
क्या है क्या नहीं है?
फिलहाल तो हम मरियम के लैपटॉप और मोबाइल पर काम कर रहे हैं जो हाल ही मिला है।
ठीक है। तुम बताओ क्या है क्या नहीं है?
मेजर जानिसारी की मालूमात और तफ्तीशी रिपोर्ट की एक कॉपी जो हमारे लिए भेजी है।
कुछ हाथ लगा?
मरियम और रुजबे यूनिवर्सिटी के उन्हीं इब्तदाई बरसों में एक दूसरे से मिले, उन्हें प्यार हो जाता है। उसी वक्त दोनों खानदानों के दरमियान शादी के प्रोग्राम बनाए जाते हैं। यहाँ तक कि मरियम दोबारा एंट्री एग्जाम देने के बावजूद मास्टर के लिए पास नहीं होती।
यानी तो फिर एक और नाकामी, इम्तिहान में फेल होना।
उसके बाद वो जरा अफसरदा और नाराज हो जाती है, लेकिन दोनों खानदान उसके रवैये की तब्दीली को इम्तिहान में इसकी नाकामी की वजह समझते हैं। इसके बाद अचानक इसकी हालत ठीक हो जाती है।
शिकस्त, अफसरदगी, रवैये में अचानक बेहतरी,
उसके बाद हमेशा उसका रुजबा के साथ इख्तलाफ रहा है। हर छोटी बात पर बहस हो जाती थी। खानदानों ने भी इस बात को तरजीह दी कि खामोश रहें।
क्यों?
उनके बखौल उन्होंने चाहा कि जिंदगी की इब्तिदा में नौजवानों के काम में बिला वजह मुदाखलत ना करें, ताकि दोनों खुद अपनी मुश्किलें हल कर सकें।
और कितना अच्छे तरीके से इन्होंने निभाया। एक जनाजा इनके हाथों में रह गया, लड़की भी रफू चक्कर हो गई। बड़ों का किरदार यही है ना, मतलब ये कि बड़े सालिसी करें, ना ये कि उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें।
इस तोहफे के तह तक पहुंच गया हूं। बेज़ाहिर इन दोनों मरियम की तहरीर सलाहियत में निखार आया और रोजबे ने उसके लिए फाउंटेन पेन खरीदा।
ये केस भी रोया मरजान और मुर्तजा के केसों की तरह एक बुनियाद रखता है। खानदान की अदम तवज्जो, अफसुर्दगी, खुशी और इसके बाद एक अजीब काम जो निशानी और मकसद से मालामाल हो, जैसे कत्ल या खुदकुशी। मेरा अंदाजा यह है कि मरियम ने भी रोया और मुर्तजा की तरह चाहा है कि एक बड़े काम के जरिए खालिस बन जाए।
अलबत्ता यह अंदाजा और गुमान से जरा आगे है। देखिए, इस रिपोर्ट पर लिखा हुआ है कि जिस गोली से चौकीदार को कत्ल किया गया था और रुजबे को मारा गया था, दोनों एक ही हथियार से निकली हुई थी। इम्कान पाया जाता है कि इस वक्त मरियम शहर की किसी ऐसी जगह पर चली गई थी जहाँ।
लेकिन उनको क्यों आदत है कि इस खुलूस का खर्चा दूसरों की जेब से अदा करवाएं?
इसलिए कि वो खुदगर्ज हैं, मगरूर हैं और लालची हैं।
इनको पढ़ा?
नहीं, पढ़ना चाहिए था।
सब झूठ है।
झूठ बोलने के जरिए तुम चाहती थी फलाह पाओ, सूरज तक पहुंचो। हाँ, शुकूक व शुबहात का रजिस्टर, जिसमें यह बात लिखी हो कि मैंने अपने माँ बाप का इंतखाब नहीं किया है, और इसमें यह बात भी लिखनी हो कि मैंने खुद अपनी तकदीर नहीं बनाई, और मैंने इस बात पे कि मेरा दिल चाहता है कि मेरा एक अपना खुद मख्तार वजूद हो।
ये मैंने नहीं लिखा है।
इनकार करती हो?
मुझे कोई डर नहीं है कि मैं इनकार करूं। ये रजिस्टर आईने
आईने
आईना वो शख्स है जो दूसरों का रहनुमा है।
आईने झूठ बोलने के जरिए फिरकों के पैरों की रहनुमाई करते हैं।
हम ये रजिस्टर उनको देते हैं ताकि उनको पढ़कर वो रहनुमाई हासिल करें, या उनकी मदद करते हैं कि उसी रास्ते पर रजिस्टरों को पुर करें।
तो फिर तुम उनकी रहनुमाई करते हैं कि वो जिस बात को चाहते हैं लिखें?
आइनों का काम मदद करना है। हम उनकी मदद करते हैं कि वो अपने आप से निजात पाएं और पाकिजगी तक पहुंच जाएं।
रुया की माने, क्या तुम रुया के बारे में सोचती हो? क्या तुम उसका आईना नहीं थी?
वो खुशकिस्मत थी कि हकीकत की रोशनी को देखने में कामयाब हुई। हर शख्स उस जगह पर नहीं पहुंच सकता है जहां पर रोया पहुंची।
किस जगह पर? क्या तुम्हें पता है कि कत्ल की वजह से उस पर केस चल रहा है? ये कैसी खुशकिस्मती है?
वो अरसा उसकी जिंदगी में रोशनी थी।
कत्ल की वजह से इम्कान पाया जाता है कि इसे फांसी की सजा हो जाए।
अच्छा तो होने दो। ये कवानीन किसने वजह किए हैं? तुम लोगों ने खुद? یہ مٹھی بھر زنجیریں ہیں انسانوں کی روحوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھنے کے لیے. ہم سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں تاکہ مل کر چلیں. رویا نے اپنی زنجیر توڑ دی اور اپنا فرض ادا کیا. جو بات اہمیت رکھتی ہے وہ رویا کا خلوص و خوشبختی ہے. اس کے پھانسی کی سزا پانے کی کوئی اہمیت نہیں.
تم نے خالص ہونے کے لیے اور چلا کاٹنے کے لیے کیا کیا کیا؟ چالیس دن تم بیٹھی رہی جسمانی اسارت میں, اس تنہائی میں, ان رجسٹروں کے ساتھ. وہ لوگ جو تم سے کہتے ہیں کہ وہ تمہارا آئینہ بنے ہیں, انہوں نے پہلے تمہاری روح کو قیدی بنایا اور اب تمہیں انہوں نے اغوا کیا ہے. تو مت سوچو کہ ابھی تم یہاں ہو, تم قید میں ہو. یہاں سے باہر بھی تم قیدی تھی, ایک قیدی روح ایک آزاد جسم میں. اس آئینے کو توڑ دو لیلا.
میں فرشتہ ہوں. لیلا مر گئی ہے. اب جب تہ ہے کہ ہر روز یہاں آؤ, مجھے سمجھاؤ, تو مہربانی کرو میری مقدس جسوں کا احترام کرو. وہ نام جس کو میرے خاندان نے میرے لیے انتخاب کیا تھا, اس کا میرے پاس کوئی اعتبار نہیں. میں نے ماضی, خاندان اور معاشرے اور میری اپنی ذاتی ساری زنجیروں کو توڑ دیا ہے. میں نے نشو نما پائی ہے اس حد تک کہ اس خدا کو جو میں دیکھتی ہوں اور وہ نیا خاندان جس کو میں چاہتی ہوں پا سکوں.
اس نئے خاندان نے کیا تمہیں دیا ہے؟ جنت کا باغ؟
میں اپنے خاندان کے راز اس شخص کو نہیں بتاؤں گی جو اندھیرے میں ہے. تم بھی مت سوچو کہ میری ماں کو لانے اور لے جانے کے ذریعے تم میری مدد کر رہے ہو. میں نے تم سے مدد نہیں مانگی.
کیوں تم سوچتی ہو کہ میں تمہارے مد مقابل ہوں؟
جب تک تم چاہو کہ میں دوبارہ دس آموز توتا بن جاؤں اور جو تم کہتے ہو میں اس کو دہراؤں اور تم مجھے قائل کرواؤ, ہم دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں.
میں ان لوگوں کے مد مقابل ہوں جو حقیقت اور خدا کے سامنے ایک خرافاتی اور رٹی ہوئی زندگی پر عمل پیرا ہے. میں حقیقت کا قائل ہوں. لے لو, اپنے پاس رکھو. جہاں تک ہو سکتا میں تمہاری مدد کروں گا.
لیلا نے یقیناً آپ کو بتایا ہوگا کہ وہ مجھ سے اپنے باپ سے خوش نہیں تھی.
نہیں, اس نے کچھ نہیں کہا.
اچھا ہے اس نے لاج رکھ لی ہے. اس شرٹ کو لیلا بہت پسند کرتی تھی. ٹھیک ہے.
نہیں, مجھے کوئی اس سے بھی زیادہ ذاتی چیز چاہیے. کھلونے یا اسٹیشنری یا کوئی ایسی چیز جس سے اسے بہت زیادہ لگا ہو.
جب لیلا چلی گئی تو اس کے بابا نے ان سب کو سہن میں پھینک دیا. وہ چاہتے تھے کہ ان کو آگ لگا دے.
اس کے والد اگر اس سے ملنے آئے تو بہتر ہے.
میں نے بہت اصرار کیا, نہیں آئے. کہتے ہیں لیلا مر گئی ہے میرے لیے, ضدی ہے. اس کا باپ بہت غصور ہے, ان کی آپس میں نہیں پٹتی تھی. لیلا بھی اپنے باپ پہ گئی ہے. اب باقی لوگ تو برداشت کر لیتے تھے اور میں سمجھوتا کر لیتی تھی, لیکن بہرحال لیلا زیادہ حساس تھی. لگتا تھا کہ جو زندگی ہم گزار رہے تھے وہ اس کے لیے کم تھی. خود اس کے اپنے بقول گھر سے چلی گئی تاکہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے.
جس وقت وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی, اس کے والد اس کے پیچھے نہیں
گئے؟ نہیں, ان کو برا لگا. کہا جا رہے تو اس سے جہنم میں جائے تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائے. کیا اس جہنم سے بدتر ہوگا جس میں لیلا گئی ہے؟
ہم سب کو چاہیے کہ اس کی مدد کریں.
لیلا اس کو بہت چاہتی تھی. یہ نشانات بھی اس کے چہرے پر لیلا کا کام ہے. اس کی نظر میں اس نے اس کا میک اپ کیا ہے.
Thank you.
लैला, लैला सुहैली, लैला फरिश्ता। क्या सोच रहे हैं सर?
जब तुम किसी रास्ते के पिछोखम में गुम हो जाती हो तो क्या करती हो?
उससे पूछते हो जो रास्ते को जानता है।
अगर वो शख्स जिसे तुम पूछती हो तुम्हें रास्ता गलत बताए और रहनमाई की बजाय तुम्हें गुमराह कर दे तो इस सूरत में क्या करती हो? कभी सोचा है तुमने?
आपके सवालात मुश्किल होते जा रहे सर।
उसको देखो, एड्रेस उसको गलत दिया है, जानबूझकर उन्होंने इसको गुमराह किया है। छोड़ दिया गया उसको ताकि इतना अपने इर्द गिर्द चक्कर लगाए कि इसका सर चक्कर आए और गिर जाए। हमें इसे अपनी पहली जगह पर वापस ले जाना होगा, पहली वाली जगह पर, इस जगह पर जहां से वो रास्ते पर आई थी। ये मेरे जहन में है कि लैला अफसाना नहीं है, मेरे जहन में है कि इसकी मदद करूं कि रास्ते की इब्तिदा पर लौट आए।
कुड़िये के साथ
शायद मैंने अफसानों को इसकी माँ के साथ देखा है। जो शख्स अपनी माँ को खैर बात कहता है इसने अपने जज्बात और फितरत को खैर बात कहा है। मैंने लैला को भी अपनी माँ के साथ देखा है। इसे अपने होश में आना चाहिए। लैला को वापस लाने के लिए टाइम और हौसले की जरूरत है और मुझे पूरा यकीन है कि एक दरीचा लैला के वजूद में है।
सूरज की तमाजत और दरख्त की नशोनुमा, मेरी जिंदगी मरियम की मौत और मेरे नए नाम की पैदाइश। नया नाम चकावक, चकावक, चकावक। सूरज की तमाजत और दरख्त की नशोनुमा, मेरी जिंदगी मरियम की मौत और मेरे नए नाम की पैदाइश। चकावक, चकावक, चकावक।
तुमने क्यों सोचा कि इसके चेहरे पर लकीरें मारने के जरिए वो खूबसूरत हो जाएगी?
उस वक्त में सोचती थी इसका ज्यादा खूबसूरत है।
अगर वो बात कर सकती तो यकीनन तुम्हें हर उस मुसीबत में अपने आप को गिरफ्तार करने ना देती जो तुम्हारा दिल चाहता था।
गुड़िया को इसलिए बनाते हैं कि वो एतराज ना कर सके।
सही, तुम ठीक कह रही हो।
गुड़िया उनसे खेलना अच्छा लगता है।
बहुत से लोगों को अच्छा लगता है, तुम्हें नहीं लगता?
मुझे पहले अच्छा लगता था, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जिंदगी मेरे लिए गुड़िया से ज्यादा हकीकी बन गई है।
गुड़िया बनना कैसा है? ये बात कि तुम बैठो और बात ना करो, और एक शख्स इसी तरह आए और तुम्हारी रूह पर कब्जा करे और उसको बदसूरत कर दे, क्या ये ठीक है? इसकी तरह
सुनो, तुमसे कह रहे हैं।
खुद को ना समझ मत बनाओ लैला।
लैला मर गई है, सूरज की तमाजत और दरख की नशोनुमा मेरी जिंदगी। लैला मर गई है, लैला मर गई है, फेरे शीन ते है।
लैला मरी नहीं है, क्यों तुम इसे जिंदा दरगुर करना चाहती हो? वो जिंदा है, अगर वो जिंदा ना होती तो इस वक्त ये गुड़िया यहाँ नहीं होती।
ये तुमने मेरे लिए भेजी है, तुमने सोचा है क्या होगा? हाँ, तुमने सोचा कि जो ही मैं इसको देखूंगी आप इससे बाहर हो जाऊंगी? तुम्हारे लिए, लो तुम्हारे लिए।
अगर तुम इसको नहीं चाहती तो क्यों इसको यहाँ ले आई?
मेरा दिल चाहता था मेरी तफ्तीशी कार्रवाई में रहे।
हम बात कर रहे हैं, इसका नाम तो तफ्तीश में नहीं है।
क्यों मुझे धोखा देना चाहते हो? आप लोग हमारे अदाओं के दिल दादो तो नहीं? आपका ये तकल्लुफ किस लिए? तफ्तीश है ना, आप लोगों को मालूमात चाहिए। ये कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैंने क्या किया है, किस चीज के बारे में सोचती हूँ, कैसे लोगों को मैं जानती हूँ, लिहाजा तकल्लुफ बरतरफ करो और अपना सवाल पूछे, किस चीज का इंतजार है?
जन्नत का बाग कहाँ है?
मुझे नहीं मालूम, बंद आंखों के साथ गई थी। तुमने भी बेजा जाकर मेरी माजी की जिंदगी को खंगाला। बहुत अरसा हो रहा है कि मैंने जिंदगी के दरवाजों को अपने लिए बंद कर दिया है। बेहतर है कि मेरी माँ की भी जान छोड़ दो, उसने काफी हद तक अपनी जिंदगी में तकलीफें उठाई हैं।
तुम्हारा दिल अपनी माँ के लिए परेशान है।
मेरा दिल किसी शख्स या किसी चीज के लिए परेशान नहीं है। मैंने सीख लिया कि दिल सोजी का कोई फायदा नहीं है। वो खुद है जो मेरी माँ बनी है, वो खुद है जिसने अपनी जिंदगी इस तरह बनाई है और इस पर इकतफा किया। उसकी बदनसीबी उसकी अपनी है। हर एक शख्स पसंद कर सकता है कि अपने आप को अपने वजूद के अंधेरे और बर्बादी से बाहर निकाले।
तुम इस वक्त अपने अंधेरे से बाहर निकल आई हो क्या?
हाँ, मैंने नशोनुमा पाई है। हकीकी रोशनी मेरे ऊपर उजागर हो गई है और मैं एक नया खुदा और एक नया खानदान ढूंढने में कामयाब हुई।
क्या दिया तुम्हें उन्होंने?
सुकून।
ये सुकून नहीं है, एक मस्नूई नींद है। गुड़िया का अपना कोई इरादा नहीं होता। किसी ने तुम्हें सुकून नहीं दिया है लैला।